रिहाना बकार रेडियो पाकिस्तान में प्रोग्राम प्रोड्यूसर हैं और पोलियो की विक्टिम हैं और पोलियो ने जो हमला किया उसके बाद इन्होंने जिस हिम्मत का मुजाहरा किया उस बारे में हम उनसे ही बात करते हैं और उनकी कहानी उन्हीं की जबानी सुनते हैं। रिहाना, आप बताएं कि पोलियो का अटैक आप पर कब हुआ और उसके बाद क्या क्या हुआ?
जी, मैं तकरीबन 2.5 साल की थी जब पोलियो का अटैक हुआ और सारा जिस्म पैरालाइज हो गया था। और जब मेरे अब्बू मुझे हॉस्पिटल लेके गए तो काफी इलाज के बाद मैं इस काबिल हो गई कि व्हीलचेयर पर बैठ सकूं और थोड़ी बहुत बात कर सकूं। ये भी आपको जानकर हैरानगी होगी कि जब डॉक्टर्स से पूछा गया कि इसकी क्या वजह है तो उन्होंने बताया कि इस एज के जितने भी बच्चे थे जिनको पोलियो वैक्सीनेशन दी गई थी वो एक्सपायर्ड थी, क्योंकि जितने भी बच्चे आए वो तकरीबन मेरी ही एज के थे।
यानी आपको पोलियो वैक्सीन दी जा चुकी थी उसके बावजूद आपको हुआ था?
जी, और काफी अरसे के बाद फिर ये है कि मैं कवर नहीं कर सकी थी, व्हीलचेयर पर थी, लेकिन और बच्चों को देख देख के मुझे शौक पैदा होता था कि मैं भी चलूं फिरूं। लेकिन जब मैं तकरीबन 9th क्लास में थी तो मेरा ऑपरेशन करवाया गया मसल्स का, क्योंकि व्हीलचेयर पर हर वक्त बैठने की वजह से मेरी टांगें टेढ़ी हो गई थी, तो पट्ठों का ऑपरेशन करवाया। फिर ये मुझे क्लिपर्स लगाए गए और जब मुझे डॉक्टर्स ने कहा कि आप चलें, मुझे नहीं पता था कि कैसे कदम उठाते हैं, कैसे चलते हैं, क्योंकि मैं अपनी जिंदगी में कभी भी नहीं चल के मैंने देखा था। तो फिर अबू ने मेरे साइज की मुझे वॉकर बनवा के दी। तकरीबन 1 साल तक मैं उस वॉकर में चलती रही, फिर मुझे पता चला कि कैसे कदम उठाते हैं, कैसे चलते हैं। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता फिर मैंने स्टिक्स के साथ चलना शुरू कर दिया और आज स्टिक्स के साथ ही मैं अपनी जिंदगी का सफर तय कर रही हूँ।
अब ये बताइए कि आपने तालीम किस तरह अपनी मुकम्मल की?
मैंने MSc की है पाक स्टडीज में और ग्रेजुएशन तक मैंने घर पे ही प्राइवेट पढ़ा है, क्योंकि मेरे अब्बू एजुकेशन से वाबस्ता थे तो ऐसा किया गया कि स्कूल में मेरा नाम दाखिल करवा दिया गया। वहां रोजाना मेरी अटेंडेंस लगती थी, लेकिन जो सिलेबस उनको टीचर्स पढ़ाया करती थी वो घर पे भेज दिया करती थी और इस तरह मैं एग्जाम में अपीयर हो जाती थी और बच्चों के साथ बैठ के पेपर्स देती थी। इस तरह जब मेरे अच्छे मार्क्स आते थे तो मुझे अगली क्लास में प्रमोट कर दिया जाता था।
तो आप पढ़ाई में किसकी हेल्प लेती थी, क्योंकि जब अगले क्लास में आती थी या जिस तरह आपने शुरू किया तो जाहिर है कोई टीचर की जरूरत तो थी?
यहाँ मैं अपने आप को खुशकिस्मत समझूंगी, क्योंकि मेरे बहन भाइयों ने मुझे बहुत तावन किया। मेरे चारों बहन भाइयों ने अपने सब्जेक्ट्स डिवाइड किए हुए थे, किसी ने मैथमेटिक्स, किसी ने इंग्लिश और उर्दू, इस तरह सारे सब्जेक्ट उन्होंने डिवाइड किए हुए थे और वही मेरे टीचर्स थे और उन्होंने मुझे पढ़ाया और आज मैं उन्हीं की शुक्रगुजार हूँ।
अच्छा, तो रेडियो में आपने किस तरह एंट्री की?
MSc मैंने कायद आजम यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद से की है और वहाँ हॉस्टल में मैं रहा करती थी और जाहिर है हर वक्त पढ़ पढ़ के टाइम किल करने के लिए भी मुझे कुछ चाहिए होता था। फिर मैं रेडियो FM वगैरह सुना करती थी, वहाँ से मुझे शौक पैदा हुआ कि मैं क्यों नहीं इस शोबे में आ जाती। और यहाँ से मैंने मुख्तलिफ प्रोग्राम्स किए और एप्रिसिएशन भी मुझे मिली।
आप जैसे बहुत सारे ऐसे माजूर हो गए होंगे लेकिन डरते हैं वो काम करने से और बाहर निकलने से, पब्लिक लाइफ में आने से डरते हैं, तो उनके लिए आप क्या पैगाम देंगी?
जी, मेरे साथ भी शुरू में ऐसा ही था। मैं बाहर आने में बहुत हिचकिचाती थी कि शायद मुझे ऐसे ही लगता था कि सारे लोग मेरी तरफ देख रहे हैं, लेकिन फिर मैंने अपनी जो मेरे अंदर सलाहियतें थी मैंने उनको महसूस किया और मैंने कहा कि नहीं, मुझे इनसे जरूर फायदा उठाना चाहिए। और जो इस वक्त मेरे स्पेशल फ्रेंड्स कहूंगी उनको कि प्रोग्राम सुन रहे हैं, उनके लिए भी मेरा यही मैसेज है कि आप अपने अंदर मौजूद खूबियों को देखिए और लोगों की तरफ ना देखिए, क्योंकि जब आप अपनी खूबियों को इस्तेमाल करेंगे तो यकीनन लोग आपके कायल हो जाएंगे और आपकी माजूरी जो है वो कुछ भी मायने नहीं रखेगी।
सफिया काजिम, उर्दू VOA, वॉशिंगटन।